دنیا کے عظیم رائٹر کے قلم سے دنیا کی بہترین کہانی، سرور 555.com آڈیو پروڈکشن۔ سر آرتھر کونن ڈوئلز کلاسک ماسٹر پیس آف مسٹری، سسپینس اینڈ ہارر۔ احتیاط کریں رات کی تاریکی میں باسکرویلز جانے سے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب برائی کی طاقتیں سنسان علاقوں میں گھومتی ہیں، اور جہاں آپ کی ملاقات بھی وہاں کے شیطانی خونی درندے دی ہاؤنڈ آف دی باسکرویلز سے ہو سکتی ہے۔ پارٹ 1۔ دنیا کا سب سے مشہور ایڈریس کون سا ہے؟ جی ہاں، شرلک ہومز اور اس کے دوست ڈاکٹر جان ایچ واٹسن کی لندن میں واقع رہائش گاہ 221B بیکر اسٹریٹ۔ وہ دور تھا 1881 سے 1904 کا، جب سر آرتھر کونن ڈوئل دنیا میں تہلکہ مچا رہے تھے۔ مگر آج بھی اگر آپ اس ایڈریس پر جائیں تو محسوس کریں گے شرلک ہومز اب بھی وہاں رہائش پذیر ہے، کیونکہ اب یہ ایڈریس شرلک ہومز میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مسٹر شرلک ہومز ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ میں یعنی ڈاکٹر واٹسن نے اس خوبصورت چھڑی کو اٹھا کر دیکھا جو پچھلے روز ایک ملاقاتی غلطی سے وہاں چھوڑ گیا تھا۔ چھڑی شاندار تھی، جس کے اوپر تحریر تھا جیمز مورٹیمر MRCS کے لیے اس کے CCH کے دوستوں کی طرف سے 1884۔ اس چھڑی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ضرور کسی ڈاکٹر کی ہوگی۔ تو واٹسن، بتاؤ اس چھڑی سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ ہومز کی کمر میری طرف تھی۔ حیران کن، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے سامنے کی چیزوں سے، تمہارے عکس کی مدد سے میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ خیر، اب بتاؤ تم اس چھڑی کے بارے میں کیا کیا اندازے لگا سکتے ہو؟ میں بولا، میرا خیال ہے کہ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے جسے لوگوں نے محبت کے اظہار کے طور پر یہ چھڑی دی ہے۔ ہومز بولا، شاندار۔ واٹسن نے بات جاری رکھی، ہاں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی دیہاتی علاقے میں بہت عرصہ رہا اور بہت زیادہ پیدل سفر کیا۔ دیکھو، چھڑی کے پکڑنے والے دھاتی حصے کی حالت خراب ہے، اور لکڑی بھی زمین پر بار بار مارنے کی وجہ سے چھوٹی ہو چکی ہے۔ شہری ڈاکٹر کہاں اتنا پیدل سفر کرے گا۔ واہ، کمال ہے واٹسن۔ اور ہاں، CCH کے دوستوں کی طرف سے چھڑی اس لیے تحفے میں دی گئی ہوگی کیونکہ اس نے بطور ڈاکٹر ان کی مدد کی ہوگی۔ شاندار، ہومز نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا، تم تو خود اچھے سراغ رساں ہو، تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں۔ تم نے ابھی جو راستہ دکھایا، میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں نے فخر محسوس کیا کیونکہ ہومز نے پہلی مرتبہ میری تعریف کی تھی، ورنہ میں ہی اس کے کارناموں کی تعریف کرتا اور وہ مجھے نظر انداز کرتا۔ اب ہومز نے چھڑی خود پکڑی، غور سے دیکھا، سگریٹ نیچے رکھ دی اور کھڑکی کے قریب جا کر لینس لگا کر اسے غور سے دیکھتا رہا، اور پھر بولا، دلچسپ، چند باتوں سے کچھ نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تم نے جو نتائج اخذ کیے تھے ان کو میں نے آگے بڑھایا تو لگتا ہے کہ جہاں تک تمہارا یہ کہنا کہ وہ دیہی علاقے میں پیدل سفر کرتا رہا تو درست تھا، مگر CCH کے متعلق تمہارا خیال غلط ہے۔ بطور ڈاکٹر اس سے کسی ہاسپٹل سے یہ تحفہ ملنے کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے، مثلاً چیرنگ کراس ہاسپٹل CCH۔ مگر اگر وہ کوئی بڑا ڈاکٹر ہوتا تو شہر کو چھوڑ کر آج سے 5 سال پہلے یعنی 1884 کو دیہات میں منتقل نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر مورٹیمر چھوٹا ڈاکٹر یا اسٹوڈنٹ تھا جس کو الوداع کے طور پر چھڑی دی گئی تاکہ وہ نئی جگہ پریکٹس شروع کرے، اور 5 سال گزرنے پر وہ 30 سالہ پکی عادات، چیزوں کو بھولنے والا، اور ہاں ایک درمیانی جسامت کے کتے کا مالک بن گیا ہے۔ واٹسن نے میڈیکل ڈائریکٹری اور مورٹیمر جیمز MRCS 1882 کو تلاش کر لیا، جہاں وہی باتیں درج تھیں جو شرلک ہومز نے بتائی تھی۔ تو واٹسن، میرا اندازہ درست تھا نا؟ اس کا اخلاق اچھا تھا، इसलिए उसे छड़ी तोहफे में दी गई। तरक्की की ख्वाहिश ना रखता था, चुनाचे शहर छोड़कर देहात में प्रैक्टिस की। एब्सेंट माइंडेड, क्योंकि छड़ी यहां भूल गया और हमें मिलने आया। 1 घंटा हमारा इंतजार करता रहा, मगर बगैर विजिटिंग कार्ड के यहां से चला गया। मगर होम्स, कुत्ते का अंदाजा कैसे लगाया? ये देखो, छड़ी पर कुत्ते के दांतों के निशान है। जबड़ा ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, यानी दरमियानी जिसामत का कुत्ता है। डॉक्टर वॉटसन, एक डॉक्टर मैन ऑफ साइंस शर्लक होम्स, स्पेशलिस्ट इन क्राइम से मिलने आ रहा है। लीजिए, वो आ गए। तशरीफ लाइए। पतला दुबला लंबा कद, दो चमकदार आंखें, अगरचे उम्र इतनी ज्यादा ना थी मगर सर पीछे से गंजा हो रहा था। उसने हाथ मिलाने के बाद अपनी छड़ी को बहुत ज्यादा खुश होकर लिया। ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, ये मुझे चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल के दोस्तों ने मेरी शादी के मौके पर दी थी। ये तो बहुत गलत हुआ, मेहमान ने हैरान होकर पूछा। इसमें क्या बुरी बात है? आपने कहा ये शादी के मौके पर मिली है, जिससे हमारे अंदाजे गलत साबित हुए। हाँ, शादी के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करने और अस्पताल को अलविदा कह रहा था जब मिली। हाँ, फिर तो मेरे अंदाजे सही थे, होम्स ने कहा। डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहना शुरू किया, मैं आपके पास एक अजीबोगरीब मसला लेकर आया हूँ, इसलिए कि आप यूरोप में दूसरे नंबर पर सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। यकीनन, मगर ये बताएं कि पहला नंबर किसका आता है, होम्स ने पूछा। जिसका पहला नंबर है उसका दिमाग सिर्फ साइंसी मामलात में चलता है। चूंकि इस मसले का ताल्लुक साइंस से नहीं, इसलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मेरे पास 18वीं सदी में लिखी गई यह तहरीर है, ये सर चार्ल्स बैस्करविल्स ने मेरे हवाले की थी, जो 3 माह पहले अजीबोगरीब और पुरिसरार हालात में मारे गए। मैं उनका दोस्त भी था और डॉक्टर भी। वो संजीदा और मजबूत आसाब के मालिक थे, हकीकत के बहुत करीब जिंदगी बसर करते थे, मगर उन्होंने कोई बात महसूस कर ली थी जो सच साबित हुई और जिसने उनकी जान ले ली। होम्स ने तहरीर लेकर कहा, मैं इससे ये अंदाजा लगा सकता हूं कि ये कब लिखी गई। इस पर 1742 का साल दर्ज है। मॉर्टिमर ने कहा, इसमें बैस्करविल्स खानदान से मुतालिक दास्तान दर्ज है, ये अजीबोगरीब और पुरिसरार हालात से भरपूर है। होम्स ने बात काटी, मगर शायद आप महसूस करते हैं कि इसमें ऐसी बातें शामिल हैं जो जदीद तरीके से हल की जा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सही, मॉर्टिमर ने कहा। और हाँ, आप अपने तरीके से इसे 24 घंटों में हल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी इजाजत से तहरीर आपको सुनाता हूँ। होम्स पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। डॉक्टर मॉर्टिमर ने पढ़ना शुरू किया। मैं ह्यूगो बैस्करविल्स के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने ये दास्तान अपने वालिद से सुनी है, जिन्होंने ये अपने बाप से, और ये ताल्लुक रखती है बैस्करविल्स के खूनी कुत्ते से। मेरा यकीन है कि ये सच्ची है। मेरा इस बात पर भी यकीन है कि दुआओं से, माफी से, वो जात जो गुनाहों की सजा देती है, सजाओं को माफ भी कर देती है। मेरे बच्चों, दुआएं ये काम कर सकती हैं। जो सजा हमारे खानदान को अपने गुनाहों की वजह से मिल रही है, हमें उससे सबक सीखना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में उससे बच सकें। बहुत अरसा पहले बैस्करविल्स की इस जागीर का मालिक ह्यूगो बैस्करविल्स नामी शख्स था। बहुत जालिम, इंसान कम शैतान ज्यादा। तमाम हमसाये उसकी दरिंदगी से परेशान थे। उस ह्यूगो की नजर एक किसान की खूबसूरत बेटी पर पड़ी, मगर वो नेक लड़की इस बदनाम जमाना इंसान से बात करने को तैयार ना थी। एक दिन जब उस लड़की के भाई और बाप घर पर मौजूद ना थे, ह्यूगो अपने 5-6 साथियों के साथ लड़की को अगवा करके अपनी हवेली में ले गया। उसे ऊपर की मंजिल के एक कमरे में बंद करके अपनी आदत के मुताबिक वो लोग नीचे की मंजिल में शराब नोशी में मसरूफ हो गए। नीचे के शोर शराबे और कहकहों से बेचारी लड़की की जान निकल रही थी। नशे में ह्यूगो अजीबोगरीब कस्में खा रहा था, तो लड़की ने बिलाखिर वो काम किया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। ऊपर की मंजिल से दरख्तों के जरिए नीचे उतरी और बेतहाशा अपने घर की तरफ भागी, अगरचे उसके घर का रास्ता तकरीबन 9 मील दूर था। शायद खाना देने या गलत नीयत से ह्यूगो ऊपर लड़की के पास गया तो पिंजरा खाली था और परिंदा उड़ चुका था। वो गुस्से से पागल हो गया, चीजें इधर उधर फेंकता नीचे उतरा और कसम खाई कि अगर शैतान उसकी मदद करे और इस देहाती लड़की को पकड़ने में मदद दे तो वो अपने जिस्म और रूह को उसी रात शैतान के हवाले कर देगा। उस ह्यूगो ने अपने शिकारी कुत्ते खोले, अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से लड़की की तलाश में गया। थोड़ी देर बाद उसके दोस्तों को भी ख्याल आया और वो भी उसके पीछे भागे। 13 आदमी घोड़ों पर सवार ह्यूगो की तलाश में जा रहे थे। चांदनी में हर चीज साफ नजर आ रही थी। एक दो मील दूर जाने पर उन्हें एक चरवाहा नजर आया। उसे पूछा, वो बेचारा इस कदर खौफजदा था कि बोलना भी मुश्किल था। उसने कहा कि मैंने एक लड़की को भागते हुए देखा, उसके पीछे शिकारी कुत्ते भी गए, मगर जो सबसे खतरनाक चीज देखी वो नाकाबले बयान थी। जब ह्यूगो अपनी काली घोड़ी पर भाग रहा था तो उसके पीछे शैतान की मानिंद खौफनाक खूनी कुत्ता लगा हुआ था और उसका पीछा कर रहा था। वो चरवाहे को बुरा भला कहते हुए आगे गए जहां उन्हें ह्यूगो की घोड़ी मिली, मगर उसका कुछ पता ना था। सब डर चुके थे। जल्द ही उन्हें शिकारी कुत्ते भी मिल गए जिनकी हालत भी खराब थी। बाकी लोग तो डर गए, मगर तीन अफराद बहादुर थे या सख्त नशे में जो आगे गए और देखा कि बेचारी लड़की की लाश पड़ी हुई है। ह्यूगो भी करीब ही मरा पड़ा था, मगर सबसे खतरनाक एक काले रंग की बला थी, खूनी कुत्ते से मुशाबे, मगर इस कदर बड़ी के तसव्वुर मुमकिन ना था। और देखते ही देखते उसने ह्यूगो बैस्करविल्स के जिस्म के टुकड़े कर दिए। मंजर इस कदर खौफनाक था कि एक आदमी तो उसे देखकर उसी रात मर गया और बाकियों की हालत मरने तक खराब रही। तो मेरे बच्चों, उस वक्त से ह्यूगो की मनहूसियत हमारे खानदान पर चली आ रही है और शायद इसी वजह से खानदान के बहुत से लोगों की खूनी मौतें वाका हुई हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें ताकीद कर रहा हूं कि अकेले रात को बैस्करविल्स के सुनसान इलाकों में हरगिज हरगिज ना जाओ। ये ह्यूगो बैस्करविल्स की तरफ से उसके बेटों जॉन और रॉजर के लिए है, इस हिदायत के साथ कि वो अपनी बहन एलिजबेथ से इस बारे में कोई बात ना करें। होम्स ने सिगरेट जलाई। अब सर चार्ल्स बैस्करविल्स की मौत के बारे में सुने जो अखबार में शाया हुई है। वो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाला था और हमदर्द और नेक इंसान था। 2 साल पहले वो अफ्रीका से वापस आया। उसकी औलाद ना होने की वजह से वो चाहता था कि इलाके के लोग उसकी दौलत से फायदा उठाएं। इलाके के लोगों का ख्याल है कि उसकी मौत की वजह में वो दास्तान शामिल है कि उसके खानदान में बददुआ लगी हुई है। वो सादा जिंदगी गुजारता था और चंद लोग उसके मुलाजिम थे और कुछ अरसे से वो बीमार भी था। उसकी आदत थी कि सोने से पहले अपने इलाके में सैर करने जाता। 4 मई को उसने लंदन जाना था। एक दिन पहले वो रात को सैर करने गया और फिर वापस ना आया। रात गई, उसकी तलाश शुरू हुई। करीबी एक दरवाजे पर उसके खड़े रहने के निशानात थे और थोड़ी दूर से उसकी लाश मिली। हाँ, ये मालूम हो रहा था कि मरने से पहले वो अपनी एड़ियों पर चल रहा था। एक करीबी आदमी ने चीखों की आवाजें सुनी, मगर मालूम ना हुआ कि कहां से आ रही हैं। उसका चेहरा इस कदर तब्दील हो चुका था कि पहचाना नहीं जाता था। पोस्टमार्टम में पुरानी बीमारी उसकी मौत की वजह बताई गई। ये जरूरी था कि लोगों की भलाई के काम जारी रखने के लिए वारिस तलाश किया जाए। और फिर चार्ल्स बैस्करविल्स के छोटे भाई का बेटा हेनरी बैस्करविल्स निकला, जो अमरीका में रहाइश पजीर था। उसे इतला दी गई कि यहां आ जाए। तो ये थी तफसीलात। होम्स ने कहा, यह तो बहुत दिलचस्प केस है। आपकी अपनी क्या राय है मिस्टर मॉर्टिमर? जनाब, वो इलाका बहुत कम लोगों पर मुश्तमिल है। सिर्फ चार्ल्स फ्रैंकलैंड और मिस्टर स्टेपलटन उस इलाके में पढ़े लिखे हैं। मैं महसूस कर रहा था कि दिल की बीमारी के साथ साथ सर चार्ल्स के आसाब भी कमजोर हो चुके हैं और आखिरी चंद दिनों में जो तहरीर मैंने आपको सुनाई वो उनके आसाब पर बहुत ज्यादा सवार हो चुकी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई गैर फितरी और खतरनाक चीज वहां मौजूद है। जो बातें उनके आबाओ अजदाद के साथ हुई हैं वो भी उनका शिकार बनेंगे। और आखिरी दिनों में मुझसे वो अक्सर पूछने लगे थे कि क्या मैंने कोई अजीबोगरीब खतरनाक चीज देखी है। और एक मर्तबा तो जब वो एक सिमत में दहशतनाक अंदाज में देख रहे थे, तो उनकी नजरों का ताकुब करते हुए मैंने देखा कि खतरनाक काले रंग की बिल्ली की मानिंद कोई चीज मौजूद है। मैं परेशानी में वहां गया मगर कुछ ना मिला। मैंने सोचा ये सब कुछ वहम है और उन्हें मशवरा दिया कि लंदन जाएं और दिल का इलाज करवाएं, क्योंकि दिमागी परेशानी और दिल की खराब हालत से उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। लंदन जाकर उनकी हालत बेहतर होगी। बावर्ची ने उनकी लाश तलाश की। वहां किसी और शख्स के कदमों के निशान मौजूद नहीं थे। और हाँ, मालूम होता था कि मरने से पहले वो गेट के पास काफी देर खड़े रहे। उसकी कांपती आवाज से मैंने भी कपकपी महसूस की। होम्स ने कुछ सवाल पूछे जिससे मालूमात मिली कि मैदान से पहले एक दरवाजा है। बहुत से कुत्ते तो वहां मौजूद हैं मगर वो बला सबसे बड़ी है। उस वक्त दरवाजा बंद था। 4 फुट उस दरवाजे की ऊंचाई है जहां मरने से पहले सर चार्ल्स काफी देर सिगरेट पीते रहे, और राख इस बात की निशानदेही कर रही थी। होम्स बोला, मुझे वहां उस वक्त मौजूद होना चाहिए था। तो आपका ख्याल है कि किसी दूसरी मखलूक ने उन्हें मारा? हाँ, क्योंकि बहुत से दूसरों ने भी ऐसी चीज देखी और हर शख्स परेशान है और रात को अकेले बाहर नहीं निकलता। होम्स ने कहा, अगर आपको यकीन है कि किसी शैतानी मखलूक ने ये काम किया है तो रूहानी इलाज वालों के पास जाना चाहिए था। अब मेरे पास क्यों आए? मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मुझे मशवरा दें कि बैस्करविल्स के नए मालिक जो 1 घंटे में यहां पहुंचने वाले हैं उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए। हेनरी बैस्करविल्स यानी आखिरी वारिस का मुझे तार मिला है कि वो यहां पहुंच रहे हैं। अब अगर बैस्करविल्स वहां जाते हैं तो वो मारे जाते हैं, और अगर वहां नहीं जाते तो इलाके के गरीब लोगों की भलाई के लिए जो काम हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। होम्स बोला, अगर आपको यकीन है कि ये किसी गैर इंसानी मखलूक का शैतानी काम है तो वो तो यहां भी हेनरी को मार सकती है। बैस्करविल्स में उसकी मौजूदगी लाजमी तो नहीं? तो मुझे क्या करना चाहिए? मॉर्टिमर ने पूछा। होम्स बोला, मुझे सोचने का मौका दें, अपने मेहमान को लें और होटल में जाएं, उनसे इस मामले पर गुफ्तगू ना करें। कल इसी वक्त उनके साथ मेरे पास आएं, उस वक्त कोई नतीजा अक्स करूंगा। जब वो जाने लगा तो होम्स ने उसे पूछा, आपने कहा कि बहुत से लोगों ने उस वहशी शैतान को देखा? हाँ, 3 आदमियों ने। तो सर चार्ल्स के मरने के बाद भी वो किसी को नजर आया?
नहीं, मैंने नहीं सुना।
शुक्रिया। होम्स इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। बहुत दिलचस्प केस है। मुझे सोचने की जरूरत है कि तमाम बातों को तरतीब से लगाकर देखूं कि असल मामला क्या है। सिगार का धुआं बेहद शदीद था जिसे होम्स पी रहा था, और कागजात इधर उधर बिखरे हुए थे। वो बोला, मैं यहां था मगर मेरी रूह मेरा जहन वहां था जहां सर चार्ल्स की मौत हुई। ये देखो, ये उस इलाके के नक्शे हैं। हर चीज मेरे जहन में बिल्कुल साफ है। देखो ये नक्शा, ये बैस्करविल्स हाल है, ये इसके इर्द गिर्द का जंगल और ये मैदानी इलाका, और यहां मोर्टिमर रहता है। इस जगह 2 पढ़े लिखे आदमी रहते हैं और यहां दूसरे लोग, और ये देखो 14 मील दूर मशहूर जेल, और यहां सर चार्ल्स की मौत हुई। दो सवाल पैदा होते हैं। पहला, क्या किसी इंसान ने ये जुर्म किया? और अगर किया तो क्यों और किस तरह? अगर ये सोचें कि डॉक्टर मॉर्टिमर के ख्याल की तरह ये किसी दूसरी खराब मखलूक का काम है तो हमें मजीद काम नहीं करना चाहिए। मगर ये नहीं सोचते। ये खिड़की बंद कर दो ताकि मैं पूरी तवज्जो से दलाइल के साथ किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। वॉटसन, तुमने क्या नतीजा निकाला?
वो कह रहा था वो एडियो पर चल रहा था।
नहीं वॉटसन, वो और तुम दोनों गलत कह रहे हो। वो एड़ियों पर नहीं चल रहा था, वो भाग रहा था। किसी खतरनाक चीज से खौफजदा उसने भागना शुरू किया। मैदान की तरफ से वो खतरा आया जिस पर वो घर की सिमत भागना शुरू हुआ। खतरे को देखकर उसने चीखें मारी जिनकी आवाज भी सुनी गई। वो बूढ़ा था, हवास कमजोर थे, तो गेट पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा था, जैसे कि मॉर्टिमर ने राख से ये अंदाजा लगाया। शानदार,
शानदार, मॉर्टिमर ने बहुत जहानत का सबूत दिया ये अंदाजा लगाकर, वॉटसन ने कहा। वो तो हर रात ही सैर को जाता था, मगर हर रात दरवाजे पर किसी का इंतजार तो नहीं करता था। ये रात लंदन जाने से पहले की रात थी। वो बेआबाद मैदानी इलाके में जाना नहीं चाहता था, मगर इस वक्त हमें इस मामले पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मजीद कुछ उस वक्त करेंगे जब कल डॉक्टर मॉर्टिमर से मुलाकात होगी। नाश्ते के बाद ठीक 10 बजे डॉक्टर मॉर्टिमर सर हेनरी के साथ वहां मौजूद थे। हेनरी बेस्करविल्स खानदानी और शरीफ कम उम्र इंसान थे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद था क्योंकि ये खत मुझे मिला है। वो आम खत था और होटल में मिला था। होम्स बोला, किसको मालूम था कि आप होटल में ठहरेंगे? किसी को कैसे इल्म हो सकता है? कोई आप पर गहरी नजर रखे हुए है। खत में किसी ने मुख्तलिफ अल्फाज को गम से कागज पर चस्पा किया हुआ था, जिसका मतलब था, अगर जिंदगी चाहते हो तो बेआबाद सुनसान मैदानी इलाके से दूर रहो। तमाम अल्फाज मैदानी इलाके के अलावा अखबार से काट कर कागज पर चिपकाए गए थे। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर मॉर्टिमर, कोई आसेब तो ऐसा खत नहीं लिख सकता? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर कोई शख्स जो इस बात पर यकीन रखता हो और मिस्टर हेनरी को वहां जाने से रोकना चाहता हो, ऐसा जरूर कर सकता है। मिस्टर हेनरी ये सुनकर परेशान हुआ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जरूर कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है। पहले इस खत को देखते हैं, फिर आपको मजीद बताएंगे। देखो, ये जो अल्फाज लिए गए हैं अखबार के जिस मजमून से काटे गए हैं, वो खास नोयत का था। और करो, यू योर योर लाइफ रीजन वैल्यू कीप अवे फ्रॉम दी। सर हेनरी हैरिस से बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होम्स ने बात जारी रखी, कीप अवे फ्रॉम और दी एक जगह से लिए गए हैं और दूसरे अल्फाज दूसरे मजमून से, तो हमें उस अखबार को तलाश करना है जहां से ये काटे गए। और मैं ये भी बता दूं कि ये उस अखबार से काटे गए हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, मगर उसने शायद ये बताने की कोशिश की है कि वो अनपढ़ इंसान है। उसने अपने हाथ की तहरीर इसलिए नहीं दी कि वो तहरीर या तो आप जानते हैं या आगे जाकर जान सकते हैं। कुछ लफ्ज ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, या तो वो केयरलेस है या फिर बहुत जल्दी में था। अगर वो जल्दी में था तो आखिर क्यों? खत तो सुबह ही मिलना था, उसके पास पूरी रात थी कि आराम से ये काम करता। हाँ, उसे किसी के आने की वजह से जल्दी करना पड़ी, मैं अंदाजे लगाता हूं, मगर फिर साइंसी बुनियादों पर उनकी जांच करता हूं। बहुत सी शायद वाली चीजों में से जो हकीकत के करीब होती है उसका इंतखाब करता हूं, मगर अंदाजों के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे अंदाजा लगाया जा सके। और हाँ, खत का एड्रेस भी होटल के अंदर ही लिखा गया है। सब हैरान हुए, ये कैसे कहा जा सकता है? ये देखें, पेन और स्याही दोनों ही खराब हैं। होटल के पेन सही नहीं होते, स्याही भी कम ही रखी जाती है। अचानक होम्स ने कागज आंखों के करीब करके ताज्जुब से कहा, ओह, ये क्या है? हैरत है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो मिस्टर हेनरी, कोई और गैर मामूली बात? नहीं, कोई नहीं। मैं तो अमरीका और कैनेडा में ज्यादा अरसा रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि बताना चाहिए या नहीं कि मेरा एक जूता गायब है। मॉर्टिमर बोला, ना ना, ऐसी मामूली बातों का तस्करा ना करें, वो इधर उधर हो गया होगा और जल्द ही आपको मिल जाएगा। हाँ डॉक्टर मॉर्टिमर, आप सही कह रहे हैं, मगर शर्लक होम्स ने पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा, तो आपका जूता गुम हुआ है? हाँ, एक ही जूता मैंने कल खरीदा था और वो भी गायब हो गया। मैंने काफी चीजें खरीदी थी जिनमें जूता भी शामिल था, मैंने तो अभी पहना भी नहीं था। हाँ, मेरा ख्याल है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। होम्स के कहने पर मॉर्टिमर ने दोबारा तमाम कहानी सुनाई। मिस्टर हेनरी हैरान होकर सब कुछ सुन रहे थे। हाँ, अब पता चला कि मुझे ये खत क्यों भेजा गया। शायद मुझे खौफजदा करके वहां जाने से रोकना चाहते हैं वो लोग, होम्स ने कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको बेस्करविल्स जाना चाहिए या नहीं? वो बोला, नहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मतलब है, वहां आपको खतरा है, इंसान से या गैर इंसानी मखलूक से? खैर, कोई भी हो, अब वो मेरा इलाका है, वहां के लोगों को मेरी जरूरत है और मैं जरूर जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला समझें। ये कहते हुए उसका चेहरा इस कदर सुर्ख हो गया जिससे मालूम होता था कि उसकी रगों में अब भी बैस्करविल्स खून मौजूद है। मुझे तो सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं होटल जाऊंगा, आप दोपहर का खाना हमारे साथ खाएं और मजीद बातें उसी वक्त होंगी। मौसम अच्छा है, मैं पैदल चलूंगा। खुदा हाफिज। दरवाजा बंद हुआ। उनके जाने के बाद होम्स ने वॉटसन को जल्दी से अपने साथ चलने का कहा। 200 गज दूर वो दोनों जाते हुए नजर आए। वॉटसन ने कहा, मैं उन्हें रोकूं? ना ना, बिल्कुल नहीं। और फिर उन्हें एक घोड़ा गाड़ी मिस्टर हेनरी और मॉर्टिमर का पीछा करती हुई नजर आई। उसमें बैठे हुए शख्स ने होम्स को देखा और गाड़ी तेजी से आगे निकल गई, मगर होम्स और वॉटसन को कोई सवारी नहीं मिली। मुझे मालूम था कि उनका पीछा किया जा रहा है, मगर वो हमारे हाथ से निकल गया। चालाक इंसान है वॉटसन, बहुत चालाक। वॉटसन ने कहा, काश नंबर ही मालूम होता। वॉटसन, नंबर नोट किया जा चुका है। जिस तरह वो उन लोगों का पीछा कर रहा था, उसी तरह हमने उसका पीछा किया। इस दौरान मिस्टर हेनरी और मॉर्टिमर नजरों से ओझल हो चुके थे। वॉटसन, उन लोगों का जो शख्स पीछा कर रहा था, उसकी एक बड़ी दाढ़ी थी। मैंने उसे देखा और उसे पहचान सकता हूँ। शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन वहां से एक दफ्तर में गए, डायरेक्टरी देखी और एक लड़के की ड्यूटी लगाई कि वो डायरेक्टरी में मौजूद तमाम इलाके के होटल्स में जाए। ये रकम लो और रद्दी की टोकरियां देखकर अखबार तलाश करो जिससे काट कर ये अल्फाज लिए गए हैं। लोगों को कहना कि एक तार गलती से रद्दी में चला गया है, उसे तलाश कर रहे हो। ठीक है सर, मैं ये काम कर दूंगा। आओ वॉटसन, अब उस घोड़ा गाड़ी को तलाश करें जिसका नंबर 2704 है। फिर पिक्चर गैलरी में भी जाना है, तस्वीरों से लुत्फ अंदोज होंगे और फिर होटल में जाने का वक्त हो चुका होगा जहां मिस्टर हेनरी हमारे इंतजार में होंगे। शर्लक होम्स का कमाल यह था कि वो किसी एक चीज पर अपना ध्यान मरकूज कर लेता था। अगले 2 घंटे हमने तस्वीर की आर्ट गैलरी में गुजारे और इस दौरान शर्लक होम्स ने तस्वीर को देखा और केस के मुतालिक बिल्कुल कोई बात ना की, बल्कि मॉडर्न बेल्जियम मास्टर्स की तस्वीर के बारे में गुफ्तगू की। वहां से हम होटल पहुंचे। होटल के क्लर्क ने कहा, सर हेनरी बैस्करविल्स ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। होम्स ने उससे कहा, क्या मैं आपका मुसाफरों के अंदराज का रजिस्टर देख सकता हूँ? जरूर देखें। बैस्करविल्स के बाद 2 मुसाफिर वहां आए थे। होम्स ने पूछा, ये आदमी वकील है ना? नहीं जनाब, ये वकील नहीं है, बल्कि बहुत अरसे से हमारे पास ठहरते हैं। और ये दूसरी खातून है, जब भी इस इलाके में आती हैं तो इस होटल में रुकती हैं। बाद में हल्की आवाज में होम्स ने कहा, देखो वॉटसन, कितनी अहम बात मालूम हुई है। जो लोग बैस्करविल्स में दिलचस्पी ले रहे हैं वो इस होटल में नहीं ठहरे। इससे ये बात मालूम होती है कि वो नहीं चाहते कि बैस्करविल्स उन्हें देखे। कमरे के बाहर हेनरी बैस्करविल्स गुस्से में खड़ा था और एक गंदा जूता उसके हाथ में था। वो गुस्से में बोला, ये देखें, ये नया जूता था, पहले गुम हुआ और अब एक और गुम हो चुका है। मैं मैनेजर से शिकायत करूंगा। वेटर ने कहा, जनाब हम तलाश कर रहे हैं। होम्स बोला, सर हेनरी आपका ये केस बहुत पेचीदा है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ निशानियां हैं जो हमें मुजरिम के पास ले जाएंगी। कुछ देर गलत रास्ते पर हम चल सकते हैं, मगर फिर सही रुख पर हमारी तफ्तीश शुरू हो जाएगी। दोपहर का खाना खाया गया।
तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com